नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं वो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की दो महत्वपूर्ण रचनाओं से हैं। एक तो है 21वीं सदी का संविधान, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, और दूसरा इसी नाम का एक और लेख। ये दोनों ही गायत्री परिवार के युग निर्माण आंदोलन की कह सकते हैं बुनियाद हैं। इनमें एक 18 सूत्रीय सत्संकल्प दिया गया है। ये असल में व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का एक पूरा खाका है, और इसका जो केंद्रीय विचार है वो बड़ा सीधा और शक्तिशाली है, आत्मनिर्माण से युग निर्माण, यानी उनका प्रसिद्ध नारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो आइए इस घोषणा पत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ उपदेश नहीं लगते बल्कि आत्मनिर्माण की एक व्यवहारिक योजना ज्यादा दिखती है।
बिल्कुल, आपने सही कहा। इस सत्संकल्प की जो पूरी नींव है वो व्यक्ति के अपने अनुशासन पर टिकी है। ठीक है, पहले ही सूत्र में ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानने की बात है, और फिर उसके अनुशासन का पालन करने की है। फिर सूत्र 2 कहता है, शरीर को ईश्वर का मंदिर समझो, उसकी देखभाल करो, मतलब स्वास्थ्य रक्षा। और तीसरा है मन का अनुशासन, इसके लिए स्वाध्याय यानी अच्छा साहित्य पढ़ना, और सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ, ताकि मन वो बुरे विचारों से बचा रहे। इसी कड़ी में आगे सूत्र 4 में इंद्रियों पर, पैसे पर, समय पर और अपने विचारों पर संयम रखने की बात कही गई है। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है सूत्र 14 में, कि जो पुरानी रूढ़ियां या परंपराएं चली आ रही हैं उनकी जगह अपने विवेक, अपनी समझ को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये सब मिलकर एक तरह से व्यक्तिगत स्तर पर एक मजबूत नैतिक आधार बनाने का प्रयास करते हैं, जहां खुद को अंदर से ठीक करना पहली प्राथमिकता है।
अच्छा, तो ये तो हुई व्यक्ति के अंदर की बात, उसके अपने अनुशासन की। लेकिन ये दर्शन फिर समाज से कैसे जुड़ता है, क्योंकि बात तो युग बदलने की हो रही है।
हाँ, सही सवाल है। देखिए, ये व्यक्तिगत नैतिकता फौरन ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाती है। जैसे सूत्र 5 कहता है कि खुद को समाज का एक अटूट हिस्सा समझो, आप अलग नहीं हो। और सूत्र 6 इसी को आगे बढ़ाता है, कहता है कि सबके भले में ही अपना भला देखो, और एक नागरिक के तौर पर अपने जो कर्तव्य हैं उन्हें निभाओ। तो ये व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति भी हैं।
और वो सुनहरा नियम भी इसमें है कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं।
हाँ।
ये सूत्र 11 है शायद।
हाँ।
और हाँ, ये भी कि किसी इंसान की कीमत उसके धन या पद से नहीं बल्कि उसके अच्छे विचारों और कामों से आंकनी चाहिए। सूत्र 10, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि बेईमानी से मिली कामयाबी से अच्छा है ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए मिली नाकामी। सूत्र 9, ये तो समाज के लिए बड़े नैतिक मानक तय कर रहे हैं।
निश्चित रूप से। और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ सोचने या मानने की बात नहीं है, ये सक्रिय होकर कुछ करने का भी आह्वान है। जैसे सूत्र 13 कहता है कि समाज में अच्छी प्रवृत्तियों को, सत प्रवृत्तियों को फैलाने के लिए अपने साधन लगाओ, अपना समय, अपना प्रभाव, अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ, ये शब्द यहाँ दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ मेहनत ही नहीं है शायद, इसमें एक सक्रिय जिम्मेदारी का भाव भी है।
हाँ बिल्कुल, पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ व्यक्तिगत प्रयास, उद्यम और अपनी क्षमता का सकारात्मक उपयोग करने से है, अपनी एजेंसी को समझना। और इसी से जुड़ा है सूत्र 15 कि अच्छे लोगों को इकट्ठा करो, उन्हें संगठित करो, और समाज में जो अनीति या बुराई है उससे संघर्ष करो, लोहा लो। तो ये निष्क्रिय नैतिकता नहीं है, ये सक्रिय प्रतिरोध और सुधार की बात है। और सूत्र 16 भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय एकता और बराबरी के लिए वफादार रहना। तो व्यक्ति को समाज सुधार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार सूत्र 17 में छिपा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। उस समय के सामाजिक धार्मिक माहौल को देखें जहां भाग्य या नियति को बहुत अटल माना जाता था, तो इस विचार का क्या वजन रहा होगा?
जी, ये बहुत ही अहम सूत्र है। ये सीधे सीधे उस भाग्यवादिता को चुनौती देता है। ये व्यक्तिगत कर्म और पुरुषार्थ मतलब सेल्फ एफर्ट पर जबरदस्त जोर देता है। ये कहता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हो, व्यक्ति अपने प्रयासों से, अपने कर्म से अपना भविष्य गढ़ सकता है, बदल सकता है। और यही विचार आप देखें तो अंतिम सूत्र यानी 18 में अपने पराकाष्ठा पर पहुंचता है कि अगर व्यक्ति खुद को बेहतर और उत्कृष्ट बनाए यानी हम बदलेंगे, तो युग मतलब समय और समाज जरूर बदलेगा। इसीलिए बीच बीच में आत्ममूल्यांकन करते रहने का सुझाव भी है, ताकि ये सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहे। ये एक बहुत आशावादी और कर्ता केंद्रित, मतलब एजेंसी फोकस्ड दृष्टिकोण है।
तो अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो निचोड़ यही निकलता है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता, नैतिक आचरण और सक्रिय पुरुषार्थ, यही सामाजिक और युगीन बदलाव की असली चाबी हैं। ये घोषणा पत्र असल में आत्म सुधार को समाज सुधार का पहला और सबसे जरूरी कदम मानता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये सिर्फ नारा नहीं, ये इस पूरे दर्शन का मर्म है।
हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न भी खड़ा होता है, खासकर आज के संदर्भ में। आज का समाज देखिए कितना जटिल है, कितनी परतें हैं। हम व्यक्तिगत प्रयासों की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही बड़े व्यवस्थागत यानी सिस्टेमिक बदलावों की जरूरत भी महसूस करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इस तरह का जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत संकल्प पर आधारित ढांचा है, वो आज की इतनी सारी बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? क्या सिर्फ व्यक्तिगत चेतना का स्तर ऊंचा उठाकर हम उन बड़ी सामूहिक और संरचनात्मक समस्याओं का हल निकाल सकते हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे और गहरे चिंतन और विमर्श की मांग करता है।